2275 ब्रिटानिया रोड वेस्ट एंड टर्नी ड्राइव के ऊपर. आप इनसे और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 9058134343. और ये जो है इनके पास एक हलाल शॉप भी है अंदर, और ये ताज़ी ब्रेड भी बनाते हैं, तो अगर आपको ताज़ा कुछ चाहिए उसी वक्त बना हुआ तो आप कर सकते हैं. और जनाब रिमिटली, रिमिटली के बारे में हम आपको बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है इनकी. आप जो है ऐप डाउनलोड कर लें, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लें, और जो जिनको आपको पैसे भेजने हैं अपने प्यारों को, उनका आप सारा जो है वो एड्रेस और डिटेल्स डाल दें. और इनके रेट्स जो हैं सबसे अच्छे हैं, कोई आपको ऐसे रेट्स नहीं दे रहा है मार्केट में, और अपने प्यारों को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सकेंगे. इसके अलावा जी हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो एक बहुत ज़बरदस्त रेनोवेटेड प्रॉपर्टी आई है, और प्रॉपर्टी के लिए तो हम आपको हमेशा एक ही नाम जो है सजेस्ट करते हैं, जस्टिन जेम्स जी का. और जस्टिन जेम्स का नंबर है 6476886931. ये जो है स्पेशियस 3 बेडरूम 2 वॉशरूम 2 लेवल कॉन्डो है फॉर सेल इन द कम्युनिटी ऑफ एरनडेल. और इसके पास जो है तमाम ट्रांजिट, ग्रोसरी, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, शॉपिंग, हाईवे, सब कुछ इसके पास है. तो जस्टिन जेम्स को इसके लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए या और भी कोई प्रॉपर्टीज है उनके लिए आपको फोन करना है तो आप कर लें. इनका नंबर है वंस अगेन 6476886931. और जी हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब आज से हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो उन्होंने एक अपना अकाउंट खोला है वहां पे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया था, रोशन पाकिस्तान अकाउंट. इसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब रोशन डिजिटल अकाउंट. तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये इसलिए है कि अब चीजें जो है डिजिटल सर्विसेज की तरफ मूव कर रही हैं, और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को अब ये मौका दे रहा है कि अगर उनको अपने अकाउंट्स खोलने हैं तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंडर खोल सकते हैं. और बहुत ही सिंपल है, आपको विजिट करना है www.bop.com.pk और अपना जाके आप यहां पे अकाउंट खोल लें, और उसके बाद आप अपने जो पैसे हैं यहां पे इनको भेज सकते हैं. तो बैंक ऑफ पंजाब का ये जो है रोशन डिजिटल अकाउंट, इसका आप फायदा उठाइए और अपने पैसे जो हैं ज्यादा से ज्यादा यहां पे भेजें. अच्छा जी, तो हम अब आपको खबरों की तरफ लेकर जाते हैं. तो खबरें जो है हमारी, सबसे पहले तो जो है इम्पोर्टेंट एक खबर, वो ये है कि आज आपको पता ही है कि बिल C-19 के ऊपर कुछ डिबेट्स होनी थी, तो आज डिबेट इतनी ज्यादा नहीं हो सकी है, और ब्लॉक की बैकवा और कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एतराज किया. उन्होंने कहा जी हमें तो आपने टाइम ही नहीं दिया, और ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है कि हम किसी बिल के ऊपर जो है वो करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो बहरहाल आज नहीं हो सकी. उसकी वजह यह है कि NDP ने अब लिबरल्स जो है उनके साथ हैंड ज्वाइन कर लिया, और उसकी वजह यह है कि अब ये इस बिल को जो है, और तो इसकी वजह से जाहिर है कि डिबेट जो है वो तो बिल्कुल कट गई, और अब जो है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में आगे लेके जाएंगे, और कल जो है इसके ऊपर जो है फर्दर अब बातचीत होगी. तो जो भी कल डिटेल्स आएंगी इसके ऊपर फिर हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे. अच्छा जनाब, आज हेल्थ मिनिस्टर क्रिस्टीन एलियट जो है उनसे आज रिपोर्टर्स ने पूछा कि अब चूंकि प्रोविंस के अंदर नंबर्स जो है वो कम आ रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं केसेस, तो क्या आप जो है खोल देंगे प्रोविंस को? तो क्रिस्टीन एलियट ने कहा कि हम तो सारी जो चीज है वो एडवाइस लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की, और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अभी हमें कहा है कि जिस कोर्स पे, यानी जिस डगर पे हम चल रहे हैं, हमको भी उसी पे चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने ये रास्ता छोड़ दिया और एकदम से फिर से ओपन कर दी सारी चीजें, तो हो सकता है केसेस फिर से बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाएं, बहुत ऊपर चले जाएं, और ICUs जो हैं वो भी बढ़ जाएं. तो ये अब अभी इसका हम जो है वो चांस नहीं ले सकते हैं, तो हम जो है अभी इसी तरीके से चलेंगे. तो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि शायद हो सकता है कि जून तक ये जो स्टे एट होम के ऑर्डर्स हैं शायद चलेंगे, तो आप जस्ट यू नो ब्रेस फॉर इट. अच्छा जनाब, सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है हमारे अहमद हुसैन साहब, अब अहमद हुसैन का नाम सुन के आप सोचते होंगे शायद ये इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, अभी तक नहीं, अब ये इमिग्रेशन मिनिस्टर नहीं है, इनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया था, नाउ ही सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर. और इन्होंने कहा है कि हमको फेडरल स्ट्रैटेजी जो है वो जो फाइनेंशियल हम हेल्प लोगों को देते हैं उसके अंदर हमको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, और ये चेंजेस इसलिए लाने की जरूरत है क्योंकि हमारे रेवेन्यूज जो हैं बे इंतहा नीचे चले गए हैं, और सर्विसेज जो हैं वो ऊपर जाती जा रही हैं. तो अगर हमको इन चीजों को मैच करना है तो हमको प्राइवेट जो सेक्टर है उसको इसमें लियोर करना पड़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर को कहना पड़ेगा कि आप $2 डालें और फेडरल गवर्नमेंट जो है $1 डालेगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डालेगी, ताकि इस तरह से जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है एक तो वो भी चलती रहे और उसमें कैश फ्लो भी रहे इकोनॉमी के अंदर, और जो ये सोशल फाइनेंशियल फंड्स जो हैं ये भी जो हैं इनके थ्रू लोगों को पैसे भी जो है वो मिलते रहें। अच्छा जनाब, एक और बात जो सामने आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बल्कि रादर वेरी सरप्राइजिंग, कि जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं स्टीवन गिलबॉल्ट, उन्होंने कुछ अर्सा पहले Bill C-10 के बारे में, Bill C-10 क्या है पहले तो हमें आपको ये बता दें, ये है CRTC का, यानी कि जो कनेडियन रेडियो एंड टीवी जो टेली कम्युनिकेशंस हैं उनके बारे में था, और इन्होंने कहा था कि हर वो बंदा जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करके बहुत ज्यादा ये जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और जो कनेडियंस जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबको रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि वो कंटेंट जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पे किया जा रहा है वो उसको जो है या तो कोई रेवेन्यू शेयरिंग का कुछ होगा गवर्नमेंट के साथ या कुछ इस तरह करके। अच्छा, अब ये बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि सिर्फ ये जो है CRTC जो है उसके रूल्स खाली सिर्फ जो है ब्रॉडकास्टर्स ही फॉलो नहीं करते हैं, लोग भी करते हैं, तो कोई कोई जो लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या ब्रॉडकास्टर्स के लिए है जो वो अपना कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, या कि इंडिविजुअल्स के लिए है। तो आज इन्होंने फिर हेरिटेज मिनिस्टर जो स्टीवन साहब हैं उन्होंने फिर क्लियर किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है ब्रॉडकास्टर्स के लिए है, और अगर कोई इंडिविजुअल उस कोई खबर डाल रहा है और उसके कोई फॉलोअर्स हैं तो उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तो विच इज गुड कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, वरना काफी कंफ्यूजन थी इसके अराउंड जो है। आज ऑन्टेरियो के जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो ऑफिस है उसने आज कहा है जी कि ये जो सर्जरीज हैं जो कि अब डेफर की गई थी, क्योंकि कहा गया था कि भाई जो COVID-19 के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, ICUs जो हैं भरते जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा अपनी जो सारी है फोकस जो है वो उनके ऊपर कर दें, उसकी वजह से बेशुमार सर्जरीज जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी, और अब इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने कहा है कि ये सितंबर के एंड पे जाते जाते 419,200 सर्जरीज पहुंच जाएंगी और इसकी कॉस्ट जो है 1.3 बिलियन को जो है वो टच करेगी। अच्छा, अब इससे पहले जब प्री पेंडेमिक का जमाना था तो ये सर्जरीज जो थी उसके लिए जो था वो अपने स्केड्यूल पे थी, और ऑन्टेरियो गवर्नमेंट जो थी उसने उसके लिए 610 मिलियन जो है बजट अपना जो था उसके अंदर एलोकेट किए थे, और उनको लगता था कि ये सर्जरीज अपने उस पर चलेंगी, लेकिन अब जो है चूंकि अब ये वैल्यू जो है इसकी अब चेंज हो गई है सारी ये जो सिनेरियो है उसमें, तो अब COVID-19 के पेशेंट्स को ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है और सर्जरीज को पीछे डाल दिया गया है, तो ये जो वॉल्यूम है ये 11% प्री पेंडेमिक टाइम से ऊपर चला गया है और कॉस्ट भी बेइंतहा इसकी ऊपर जो चली गई है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ये जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस वाले हैं कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसका जो शॉर्टफॉल है इन द नेक्स्ट 9 ईयर्स वो भी इस बेतहाशा बढ़ गया है, एंड इट इज टचिंग नाउ $61.9 बिलियन। तो ये जो है अब टारगेट्स को अगर वो कहते हैं कि आपको मीट करना है तो फिर आपको अपने जो खर्चे हैं दूसरे अननेसेसरी उनको कट करना पड़ेगा, वरना हेल्थ केयर जो सिस्टम है जाहिर है ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा जो है वो सफर करेगा। अच्छा जी, ये एक हम आपको वैसे तो बीच बीच में से बताते ही रहते हैं कि वैंकूवर के अंदर BC में जो है काफ़ी ये गैंग वॉर्स वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन संडे के दिन तो मतलब है कमाल ही हो गया, और उसकी वजह ये थी कि जो ये वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बाहर जो है ये शूटिंग्स वगैरह होती रहीं, और जिस वक्त पुलिस ने जाके वहाँ पर फाइंड आउट किया तो उनको पता चला जी कि ये तो एक गैंग वॉर है, और इस शूटिंग के में जो एक आदमी जिसकी डेथ हो गई थी, आदमी जो 28 इयर्स का था, तो पुलिस कहती है कि पुलिस को उसके बारे में जो है पता था। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम के स्पोक्स पर्सन है सर्जेंट फ्रैंक जैंग, उनका कहना है कि ये एक SUV आई है उसमें उन्होंने शूटिंग की है और उसके बाद फिर जो है वो भाग गए हैं, जो कि 28 किलोमीटर जो है क्राइम सीन से दूर मिली थी। तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि दो आदमी उसमें बैठे हुए थे, लेकिन हो सकता है कि और भी लोग इसके अंदर बैठे हुए। और उन्होंने फिर से कहा है कि ये दिस इज पार्ट ऑफ द गैंग वॉर, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें कोई आदमी कोई किसी को आपने जो है वो पिन पॉइंट नहीं किया हुआ था या क्या। तो ये गैंग वॉर्स बहुत ज्यादा वैंकूवर में बढ़ती जा रही है और जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं बिल ब्लेयर साहब, उन्होंने भी बड़ा कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग और इनको जाहिर है कि जो रोकने की जरूरत है, लेकिन ये अब गैंग वॉर्स हर वक्त चलती हैं वहां पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको रोकने के लिए क्या कर रही हैं, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा और हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जनाब, लोग जो हैं वो या तो पागल हुए हुए हैं या उनको समझ में नहीं आ रही है कि COVID-19 इज रियली रियली सीरियस। हालांकि गवर्नमेंट जो है इतने ज्यादा जो है वो फाइन्स भी दे रही है, मगर फिर भी कुछ लोग जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। अच्छा, संडे के दिन क्या हुआ जी कि टोरंटो का जो चाइना टाउन है वहां पे तकरीबन कोई 150 लोग पार्टी कर रहे थे और पुलिस को उसके बारे में बताया गया। तो पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर जो है बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने जब वो पुलिस आई तो कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ तो भाग गए, लेकिन तकरीबन 24 लोग जो हैं पकड़े गए और फिर उनको चार्ज किया गया। और इनके जो है इनके पास से अल्कोहल भी निकली जिसकी की कीमत जो है 13,000 डॉलर्स के पास है। और अब पुलिस का कहना यह है, जो इनकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कहते हैं कि हमने इसके अंडर इनको चार्ज किया है एंड वी आर आल्सो लुकिंग फॉर अदर पीपल जो कि यहां पे थे, क्योंकि बाकी सब जो है वो डिस्पर्स हो गए जैसे ही पुलिस यहां पे आई। एक मजे की खबर यह है जो कि आप शायद एंजॉय करेंगे या आपको शायद इस स्ट्रेस के जमाने में अच्छी लगेगी कि कुछ कनेडियन कंपनीज जो हैं अब आपको फ्री बीज ऑफर कर रही हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, अब इसमें कौन सी कंपनीज हैं? कुछ कंपनीज हैं जो कि अब सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि अगर आप हमें प्रूफ दिखा दें कि आप जो हैं आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन मिल गया है तो फिर हम आपको जो है कुछ गुडीज देंगे। अच्छा जी, वो गुडीज और फ्री बीज क्या है? जैसे कि अब पोलैरिटी ब्रूइंग है, वो कह रहा है कि मैं $6 ऑफ दूंगा आपको बियर के ऊपर। किचनर में जो द म्यूजियम है, वो कह रहा है कि हम तो जी आपको फ्री जो है वो एडमिशन देंगे। मैन्यू लाइफ कह रहा है कि वो लोग जो कि एनरोल्ड हैं अंडर आवर वाइटैलिटी प्रोग्राम, उनको हम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं। टोरंटो बेस्ड फाइनेंशियल ऐप जो है ड्रॉप, वो कह रही है जी हम तो कैश इंसेंटिव्स दे रहे हैं अगर आप अपनी एक सेल्फी लेके जो कि आप वैक्सीनेट हुए हैं हमारी जो है वेबसाइट पे डालेंगे। बर्गर जॉइंट जो है वो कह रहा है कि जी हम आपको एक फ्री डिजर्ट देंगे। और बडवाइजर जो है वो कह रहा है जी कि हम आपको $5 ऑफ देंगे अगर आप अपने बियर हमसे लेंगे। और बॉस्टन पिज्जा जो है वो भी 15% डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रहा है। तो इस तरह अगर आप इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, कोलंबियन जो प्रेसिडेंट हैं इवान डीक, उनका आपको पता ही है कि काफी वो ट्रबल में रहते हैं। 44 ईयर्स इनकी एज है और इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले भी 2019 में अगर आपको पता हो कि स्टूडेंट्स ने काफी जो है वो निकाली थी, मोर्चे निकाले थे और इनको काफी जो है वार्न किया था कि मुल्क के अंदर जो है वो ना तो जॉब्स हैं ना तो ना कोई टैक्स रिफॉर्म्स हैं और बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। तो अब जब ये टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए तो वो इतने खराब थे कि लोगों ने कहा कि हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, वो रिजेक्ट तो इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर ऑन द स्ट्रीट्स और अभी भी वो जो है वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये जो पेंडेमिक के जमाने में बहुत ज्यादा पावर्टी आ गई है, इसको खत्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट कोई लोगों की जो है वो हेल्प नहीं कर रही है। तो जाहिर है कि जो प्रेसिडेंट हैं कोलंबियन वो काफी जरा ट्रबल में है। नोवावैक्स जो है, आपको पता ये भी एक यूएस कंपनी है। तो नोवावैक्स ने अब एक कुछ एक इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने अपनी कुछ प्री क्लिनिकल स्टडीज होल्ड की हैं और उन्होंने इन्फ्लुएंजा का और कोविड 19 की जो वैक्सीन है उन दोनों को मिक्स करके फेरेट्स और हैमस्टर्स जो हैं उनको दिया है और उन्होंने ये देखना चाहते थे कि कितनी एंटीबॉडीज इससे जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। और उनकी जो प्रीलिमिनरी जो प्री क्लिनिकल स्टडीज थी उसमें उनको पता चला कि काफी हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो अब ये जो इनकी दो दवाइयां जो उन्होंने मिलाई हैं, नैनोफ्लू एनवी एक्स और कोव 2373, वो कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर हम जो हैं अब ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू करेंगे, और अगर इसके रिजल्ट्स ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर भी अच्छे आए तो फिर हम इसके जो डेटा है वो WHO को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जाहिर है कि अभी तक कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ है और अभी ये ट्रायल की स्टेज में है, लेकिन जाहिर है कि ये एक और अच्छी जो है खबर हो सकती है। रेड क्रिसेंट जो है जी, उसने वीकेंड के ऊपर बताया था कि जो अल अक्सा मॉस्क है, क्योंकि आपको पता है कि जेरूसलम के अंदर अल अक्सा डे मना रहे थे जो है पैलेस्टीनियंस, तो उधर जो है काफ़ी हुल्लड़बाजी हुई, वायलेंस हुई, और वहां पे जो है कुछ तकरीबन गैस कैनिस्टर्स और स्टन ग्रेनेड्स काफ़ी सारे चलाए गए, डजन्स ऑफ देम। तो इसमें काफ़ी पैलेस्टीनियंस जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, और इसके अलावा 50 जो थे वो काफ़ी सीरियस थे, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। पुलिस का कहना है कि ये इसके अंदर 9 जो थे उनके अफसर जो हैं पुलिस के, वो भी हर्ट हुए हैं इस लड़ाई में। तो ये वायलेंस जो है अब जेरूसलम में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से जी पहली बार उनके जो स्पोक्स पर्सन है सैयद खतीब जादे, उन्होंने आज पहली बार ये माना है, इससे पहले तो ईरान मान नहीं रहा था कि हमारी कोई बातचीत चल रही है सऊदी अरेबिया के साथ, आज उन्होंने मान लिया है कि हाँ हमारी बातचीत जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ चल रही है, और हम हमेशा जो है रीजनल जो हमारे कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत को बहुत हम वेलकम करते हैं। और आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे बैक चैनल टॉक्स जो हैं ईरान के साथ जारी हैं, लेकिन ईरान ने इसकी जो है पुष्टि नहीं की थी, तो आज उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हाँ हमारे साथ चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तक कोई रिजल्ट्स तो इसके डेफिनेटिव नहीं निकले हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एक शुरुआत हो गई है। तो वो जो एक लड़ाई का और वो जो एक राइवलरी का जो एक माहौल बना हुआ था रीजन के अंदर, तो वो अब नहीं रहेगा और कुछ चीज़ें सेटल होने में जो है वो मदद मिलेगी इन टॉक्स की वजह से। तो अब जो भी कोई इसके अंदर नई डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। यूएई और कुवैत ने जी आज बड़े सख्त किस्म के जो है कदम उठाए हैं, और यूएई कुवैत दोनों ने ही कह दिया है आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से कोई भी पैसेंजर्स जो हैं अगर वो ट्रांजिट तक में भी हैं तो भी वो उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं आ सकते हैं। और कुवैत ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई आदमी जो है वो हमारे मुल्क में कुवैत में आना चाहता है तो पहले वो किसी और मुल्क में जाके 14 दिन जो है उसका क्वारंटीन काटे, और जीरो उसके पास जो है वो होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव COVID-19 का वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो फिर हम उनको जो है कंसिडर करेंगे। मगर ये 3 कंट्रीज जो है इनके साथ तो बिल्कुल सस्पेंड कर दिए उन्होंने अपनी जो है फ्लाइट्स, एंड इट इज़ आई बिलीव फ्रॉम जो है वो May 12 से, वेंसडे से, यानी कि सारी फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंडेड रहेंगी। फ्रांस के अंदर भी जनाब काफ़ी वबाल आया हुआ है, और फ्रांस के अंदर वबाल इसलिए आया हुआ है कि एक मैगजीन है वेलरो एक्चुअल, और इसमें इसकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं उनको बड़ा धमकाया और वार्न किया गया है, और उनको कहा गया है कि तुम ये जो इस्लामिस्ट्स हैं जिनको के वो कहते हैं कि ये जो हार्ड लाइनर्स हैं इनको तुम जो है बहुत ज़्यादा ढील दे रहे हो, जिसकी के वजह से हमारे मुल्क में सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो सकता है बिकॉज इट्स ऑलरेडी ब्रूइंग। अब मैक्रों साहब के बारे में कहा जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर जो जेरल्ड डरमेन हैं वो कह रहे हैं कि जो मैक्रों साहब हैं उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, उन्होंने बड़ा स्लैम किया। अब इसके अंदर जो है खतरे की खबर ये है कि इसमें बहुत सारे जो मिलिट्री के बंदे हैं वो भी शामिल हैं। अब जब मिलिट्री की खबर आई तो जाहिर है कि जो उनके जनरल हैं उन्होंने भी बड़ा इसको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तकरीबन 20 सेमी कुछ रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उन्होंने भी ये इसको शामिल किया। अच्छा, अब लेटेस्ट क्या हुआ इसमें, लेटेस्ट ये हुआ है कि एक लेटर जो है इस मैगजीन की वेबसाइट पे आया है, और वो दैट इज ओपन टू पब्लिक। वो कह रहे हैं कि जो जो मैक्रों साहब की जो पॉलिसी है जो कि बड़े वो सॉफ्ट हैं इस्लामिस्ट, तो सब लोग भी इस लेटर को साइन कर सकते हैं। और जो इस मैगजीन ने बताया है कि अभी तक ये उन्होंने वीकेंड पे शुरू किया था तो मंडे तक 93,000 सिग्नेचर्स उनको आ चुके हैं कि मैक्रों साहब को कुछ सख्ती जो है वो करने की जरूरत है। जाहिर है कि उनका इशारा जो है मुसलमानों की तरफ है, तो अब देखेंगे कि अब ये जो है आगे आने वाले दिनों में ये चीज अब क्या रंग दिखाएगी। इंडिया के अंदर जी जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने आज सेंटर को फिर से बड़ा जो है वो फिटकार लगाई है, और उन्होंने कहा है कि जब मुल्क के अंदर जो है सेकेंड वेव आई हुई और लोग मर रहे हैं तो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट जो है वैक्सीन जो है बाहर के मुल्कों में भेज रही है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 6.5 करोड़ की वैक्सीन बाहर के मुल्कों में भेजी गई हैं। तो क्या है ये, ग्रीड है, ये लालच है कि क्या है? और उन्होंने कहा कि इसके अलावा कि हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमें कहा गया है कि जी हमने जो है सिर्फ 5.5 लाख जो है वैक्सीन दिल्ली के लिए मंगवाई हैं। उन्होंने कहा जी ये सेंटर की गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे बारे में झूठ कह रही है, हमारे तो डायरेक्ट जो है वो रबते हैं, ये जो दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वैक्सीन की इंडिया के अंदर, एक हमने हमने आपको बताया ये बहुत दफा भारत बायोटेक है और दूसरी जो है सीरम इंस्टीट्यूट है, तो हमने तो उनसे 1.34 करोड़ डोजेस जो हैं हमने मंगवाई हैं क्योंकि हम तो ये भी चाहते हैं कि जो 18 एंड अबव 18 है उनको भी मिल जाए, ना सिर्फ ये कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीन मिले, सबको मिल जाए। तो ये हमारे बारे में जो है गलत एलिगेशंस हैं और जो है गलत किस्म की जो है बातें फैलाई जा रही हैं। अच्छा जनाब, आज NDTV की एक बहुत ही दिल दुखा देने वाली खबर थी, और अगर आपका दिल थोड़ा कमजोर है तो आप बेशक ये खबर ना सुने। और वो खबर ये है कि जो चौसा का इलाका है बिहार के अंदर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि वहां पे गंगा के पास, गंगा का जो बैंक वहां पे लगता है उसके पास बहुत सारी डेड बॉडीज, हंड्रेड्स ऑफ देम जो हैं वो फ्लोट कर रही थी उसके ऊपर, जो कि अब जो हैं ब्लोटेड हैं और डीकम्पोज हो रही हैं। और ये जब इसका NDTV ने जब इसकी प्रोब शुरू की तो इनको पता चला कि ये सारे मोस्टली जो हैं इसमें से COVID-19 की बॉडीज हैं, और तकरीबन 40 से 150 के करीब जो थी बॉडीज उन्होंने देखी वहां पे। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो रिश्तेदार जिनको के क्रिमेशन के लिए जगह नहीं मिली या जिन लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है अपने COVID-19 के पेशेंट्स के लिए, तो वो ऐसे गंगा में फेंक फेंक के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है बॉडीज को जो है दफनाने का या जलाने का। तो बिहार गवर्नमेंट को जिस वक्त ये खबर पता चली तो उन्होंने एक इंक्वायरी तो बिठाई है, बट दिस रियली रियली इज एक्सट्रीमली सैड के लोग जो हैं ऐसे बॉडीज को, की बेहरमती होती है क्योंकि आप ऐसे अगर फेंक के पानी में चले जाएंगे तो मरा हुआ जो आदमी है उसकी काफ़ी बॉडी की बेहरमती होती है, मगर अब क्या किया जा सकता है। इसी तरह की बॉडीज जो हैं कुछ यमुना के ऊपर भी जो हैं वो देखी गई हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस ने जो है इसके ऊपर बहुत जो है वो सेंटर की गवर्नमेंट को खींचा है, और उन्होंने कहा है कि सेंटर जो अपनी फिगर्स दे रहा है वो बहुत कम है क्योंकि अब ये जो सच है ये सामने आ गया है, क्योंकि ये जो बॉडीज फेंकी जा रही हैं ऐसे उनके वो तो अनअकाउंटेड फॉर हैं, तो इनका जवाब जो है वो कौन देगा। बहरहाल एक्सट्रीमली सैड न्यूज, वेरी वेरी सैड न्यूज। पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है कि चूंकि अभी वीकेंड के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो उधर गए हुए थे सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया में उन्होंने जो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस उनसे बात की है, और पाकिस्तानी कुछ 1100 जो प्रिजनर्स हैं पाकिस्तानी जेलों में उनको अब लाने का एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि 30 पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स हैं वहां पे वो मर्डर और ड्रग ऑफेंसेज में इन्वॉल्व थे, तो उनको तो ऑलरेडी कोर्ट ने जो है वो मौत की सजा दे दी है, वो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी लोग जो के छोटे ऑफेंसेज में छोटे छोटे फाइन्स जिनके थे और वो फाइन्स नहीं पे कर सके थे, तो गवर्नमेंट उनके फाइन्स पे करके अब उनको वापस मुल्क में लेकर आएगी। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी मुलाकात आज हुई है अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब से, वो थे आज काबुल में और एक दिन की वो मुलाकात के लिए वहां पे गए हुए हैं, और काफ़ी सारी जो हैं रीजनल एंड बायलैटरल जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंड इस तरह की जो करंट डेवलपमेंट्स हैं पीस प्रोसेस में उसके ऊपर टॉक्स हुई। तो अब जो जनरल बाजवा है उन्होंने एक दफा से फिर पाकिस्तान का स्टैंस बहुत क्लियर करने की कोशिश की इनको अशरफ गनी साहब को, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल जो है सपोर्ट करते हैं, और आपके मुल्क में पीस आएगा तो पाकिस्तान के अंदर भी पीस आएगा उसकी वजह से। तो जी आज फॉर अ चेंज जो है अशरफ गनी साहब उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, अब कल उनका क्या रंग ढंग होएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे तो वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं। खैर हम देख सकते हैं कि अब क्या होने वाला आगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि जो ہماری جو پاکستان کی سٹیٹ ہے اس کے اینمیز ہیں، وہ بہت ساری سازشیں کرتے ہیں یہاں پہ بلوچستان میں، لیکن ان کی جو سازشیں ہیں بہت دفعہ فیل ہو جاتی ہیں، ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی اس وقت آئی جب ٹیررسٹوں نے تین جو ہیں، پانچ سولجر جو ہیں سوری، ان کو مار دیا، اور جو ان کے ساتھ سولجرز کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ان کی، اس میں تین جو ہیں وہ ٹیررسٹ بھی مارے گئے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری فائٹ جو ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز اسی طرح ٹیررزم کے اگینسٹ جاری رکھیں گی، اور پوری نیشن جو ہے، پوری قوم جو ہے، وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ان وار اگینسٹ ٹیرر۔ پاکستان کے اندر جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب، انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم اب نئی گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، نئی گائیڈ لائنز دے رہے ہیں ایسٹرازینیکا کی، اور اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے پیریڈ شارٹ کر رہے ہیں 12 ویک سے 8 ٹو 12 ویکس کر رہے ہیں۔ اینڈ جناب وی آر ریچنگ رائٹ ایٹ دا اینڈ آف آور نیوز۔ کنگنا رناوت صاحبہ جو ہیں، ان کی جو ہیں بہت ساری ٹویٹس جو کہ غلط قسم کی تھیں، ان کو اب انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کووڈ 19 ہو گیا، بٹ اٹس جسٹ یو نو اے اسمال ٹائم فلو۔ تو لوگوں نے کہا کہ 4000 ڈیتھس پر ڈے انڈیا میں ہو رہی ہیں، تو آپ ایسی جو ہیں وہ باتیں کیسے کر سکتی ہیں۔ اور جناب امیتابھ بچن صاحب نے، انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے ویسے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں اپنے چیریٹیبل جو ایفرٹس ہیں ان کے بارے میں بات کروں، لیکن مجھے اتنے گندے کامنٹ سوشل میڈیا پہ دیے جاتے ہیں کہ مجھے آنا ہی پڑا سامنے اور مجھے بتانا ہی پڑا، کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ چیریٹی کریں اور دنیا کو بتائیں۔ لیکن آج انہوں نے سامنے آ کے بتایا کہ میں نے 2 کروڑ روپیہ کووڈ فیسلٹی جو ہے دلی میں اس کے لیے دی ہے، 1500 فارمرز جو ہیں ان کو اپنی جیب سے ان کے لونز دے کے میں نے وہ لونز ختم کر دیے ہیں، اور ان کو سوئسائڈ سے بچایا ہے۔ میں ڈیلی 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے پورے مہینے کے لیے جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہوں۔ میں 5000 لوگوں کو روزانہ ممبئی شہر کے اندر جو ہے لنچ یا ڈنر دیتا ہوں۔ ہاسپٹلز میں اور پولیس کو جو ہے میں پی پی ایز جو ہے اور ماسکس پرووائڈ کرتا ہوں۔ اور جس وقت یہ مائیگرنٹس کا مسئلہ آیا تھا، تو اس وقت میں نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ ان کے جو ملکوں میں پہنچایا تھا۔ اور جناب آخری خبر ہماری، پاکستان جو ہے وہ آخری اپنا جو سیکنڈ ٹیسٹ تھا وہ زمبابوے کے اگینسٹ جیت گیا ہے، اور شاہین شاہ آفریدی نے بڑی زبردست بولنگ کی، 5 for 52 لیے، اور بابر اعظم جو ہیں انہوں نے اب اپنا نام بہت زیادہ بنا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہیں اب 4 اوپننگ ٹیسٹ میچز جیتے ہیں، اور 6 straight سیریز ون جو ہے وہ پاکستان کے نام کی ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہتی ہوں بائے بائے اینڈ آئی ول سی یو ٹمارو۔
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Ontario ka COVID-19 plan phailav ko rokne aur zindagiyan bachane mein madad faraham kar raha hai. Jab tak hum sab ko vaccine nahi lag jati, mask pehne, apne haath dhoye aur faasla rakhein. Rozana hazaron log vaccine lagwa rahe hain. Aapki bari jald aane wali hai. ontario.ca/covid-vaccine-plan پر مزید جانیں، یا 300 زبانوں میں معلومات کے لیے 1-888-999-6488 پر کال کریں۔ ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو۔
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
सोडी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दी मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी ले सोडी फर्नीचर ने कर्ब साइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दी है। तुसी एना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर एना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोडी फर्नीचर दी सेल्स टीम वर्चुअल टूर्स अते बेस्ट डील्स ले तुहानू आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस से मिलेगा सोडी फर्नीचर तो।
J&G Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&G Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obhay at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
क्या आपको कोविड 19 है? क्या आपको लगता है कि ये आपको काम पर लगा है? अगर आपको यकीन है कि कोविड 19 आपको काम पर लगा है तो आप WSIB बेनिफिट्स के मुस्तहिक हो सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए या क्लेम दायर करने के लिए बराहे मेहरबानी WSIB.ca मुलाहिजा करें या पीर से जुमा 7:30 सुबह तक 5 शाम 1-800-387-0750 पर कॉल करें। अगर आप हमारे साथ उर्दू में बात करने को तरजीह देते हैं तो हमारे पास तर्जुमान दस्तियाब हैं। WSIB आपकी मदद के लिए मौजूद है।
कोविड 19 की वैक्सीन है और आप?
मुझे कैसे पता चलेगा कि कोविड 19 की वैक्सीनें महफूज हैं?
जब भी कोई नई चीज आती है तो सवालात का जहन में आना आम बात है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हेल्थ कैनेडा सिर्फ उन वैक्सीनों की मंजूरी देता है जो महफूज, मुअस्सर और आला तरीन मैयार की हामिल होती हैं। कैनेडा अपने आला मैयारात और सख्त गिर वैक्सीन के जायजे के अमल की बदौलत दुनिया भर में जाना जाता है। कोविड 19 की वैक्सीनों के बारे में canada.ca/covidvaccine पर मजीद मालूमात हासिल करें। हुकूमत कैनेडा की तरफ से एक पैगाम।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660 quicktruckloop.com।
आइए टोरंटो को वैक्सीनेट करें। अपनी बारी आने पर कोविड की वैक्सीन लगवाएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए toronto.ca/covid19 पर जाएं या कॉल कीजिए 888-999-6488।
बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका, ऑटो लोन और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स जैसी बेशुमार सहूलियाँ। अभी www.bop.com.bk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल।
जी साहब, नाजरीन वेलकम बैक अगेन। एंड साहब, 6:31 और 22 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और आज हमारे पास टाइम कम है और बातें ज्यादा है हमारे पास। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन इधर आए हुए हैं, मगर फिर भी 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है। शेख यूसुफ बदात साहब, आई हैव नथिंग बट अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन, वेरी नॉलेजेबल, वेरी लर्नेड पर्सन, इमाम ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए कुछ सवाल जवाब करेंगे। आपने भी कुछ सवाल करना हो तो लाइक आई सेड 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ शेख यूसुफ बदात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर, हाउ आर यू?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I'm doing great. I hope all the listeners and everybody watching are also great and inshallah enjoying the last few moments of the blessed month of Ramadan. So inshallah for today's brief discourse, I just want to share a hadith of the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, wherein the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his situation is being described in the last few days and nights of the month of Ramadan. And that is, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ, when the final few days and nights of the month of Ramadan would arrive, شَدَّ الْمِئْزَرُ, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam would buckle up, وَأَحْيَ اللَّيْلُ, and he would stay awake during the night in worship, and finally, وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ, he would also awaken his household. So what we learn from this beautiful hadith describing the situation of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that he took these final few days and nights very seriously. even more than the previous 20 days of the month of Ramadan. So the message is very clear that even though the month is dissipating, is melting away, is almost gone, this does not mean that, we don't have an opportunity to excel further in terms of our relationship, our spirituality, our essence with the Almighty and the beautiful religion. So there are several kinds of people during the concluding days of the month of Ramadan. There are those who may have wasted the previous days. For them, there is a lot of hope that the month is not gone yet. We can still value the last 2 days and nights of the month of Ramadan by engaging in worship and by doing our best in valuing the days and the moments that remain. Another category of people is they did take the month seriously previously. So for them, the message is that don't give up and don't lose hope and don't dwindle and wither away. Rather, continue to excel and increase in worship and doing all the good that you can. And then the last category of people are those who may have done somewhat good and somewhat not so good. So again, for them, the message is that conclude the month very strong. There's actually a beautiful hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, "Innama al-a'malu bil khawatim," that actions are judged based on their conclusion. So, if we conclude the month of Ramadan with high spirits, with good du'as, with good worship, with charitable works, with immense fasting, and all the good that you all are accustomed to doing, and inshallah, by the end of Ramadan, we will definitely find ourselves in the highest state of spirituality and goodness from Allah subhanahu wa ta'ala. So we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to, value every moment that remains and increase in our good deeds, so that when we conclude and when we exit out of the month of Ramadan, we are in a much better state than we did enter in it, inshallah. And these are my few words to start the session off today, inshallah.
Thank you so much, Imam Saab. And now, this is a two-part question. First one is, can sadaqa jariya, like building a well or water pump, be done on behalf of people who are still alive, like parents and children?
Yes, so mashallah, when it comes to sadaqa jariya, perpetual charity, this can be done for oneself and it can also be done for others, in the name of others. Obviously, the deed is only for Allah subhanahu wa ta'ala. It's exclusively for Allah subhanahu wa ta'ala. So digging a well, donating a Quran, sponsoring a HIV student, establishing a masjid, helping an orphanage, these are all good works, and by doing them, you're going to get perpetual rewards. Now, this can be done for someone who's alive. It can also be done for someone who's passed away. And the how we do it is we make an intention. The intention should be that, oh Allah, I am making arrangements for a well to be dug in a place where there's no water, and I want the rewards to also go to my parents, for example, or for a loved one who has passed away. Or we could also do it for someone who's alive. So for so-and-so person in my connection or my relatives or my family or even just general, and I want the rewards to go to them as well. So the hadith points out whenever we do this kind of good deed with this type of intention, then not only do we get the full reward, the person who we intend on their behalf for this deed to be done, they also get the full reward. And Allah's treasures, Allah's khazain are never ending, and they are limitless, and we will get the rewards ourselves, and so is the person who we have made intention for. So yes, it can be done for a person who's alive as well as for a person who's passed away.
The second question regarding the same one related to this is, can you pay our zakah and build a well and have that also be sadaqa jariya for your parents? One amount is for your zakat and sadaqa for them.
Okay, so when it comes to zakat, one of the conditions of zakat is
ownership must be transferred. So you have to give the zakat to a human being who's in need, a Muslim human being, a poor person who's in need. Now, if we just take the zakat money and we establish a well, then that ownership is not transferred. So that's why there's a way to go about it. If you want to build a well for the poor, what you do is you take the zakat money and you give it to the poor, you transfer the ownership to them, and you say, okay, these funds let's use to build the well. Or we can also talk to the poor in that region, in that area, and say, look, this is zakat money. I would like to build a well for you, for your use. And with your approval, I'd like to proceed. So that way what happens is the zakat is transferred to the human being, its ownership, and then you're using those funds to build the well and to establish the charitable works. And yes, if you want to also include the thawab and the rewards for the deceased, you can say that in your intention that, oh Allah, I'm fulfilling my zakat, but I also want the rewards of this zakat to be passed on to the deceased, to the family members, to the parents, whoever has passed away. So it's based on the intention. But it's important to always fulfill all the conditions of zakat. And one condition of zakat is to give the zakat to humans who are poor, so that the ownership is transferred from who's giving the zakat to the recipient of the zakat.
Hello? Yeah, because it was... Brother, ek minute ke liye hold kijiyega, main abhi aapka sawal leta hoon. The question was because we said in last couple of weeks that zakat is not, you cannot give it to your parents, but this zakat and sadaqah together, they can go and build a well.
Yeah. So yeah, that's correct. You can build a well, but not with zakat if you don't transfer it for ownership.
Okay.
If it's not given to humans who are poor, then what you could do is just donate the money to build the well, but then it's going to be from sadaqah, not from zakat.
Okay. Ji, brother, assalamu alaikum.
Ji, assalamu alaikum. Mera sawal ye hai ki kya hum zakat ke paison se kisi ko hafiz bana sakte hain?
Thank you so much. Ji, go ahead.
So if there is a...
Matlab, agar woh zarurat mein zakat ke aur agar unko hum hafiz...
Yes, I understand the question. So the question is, if we can we give zakat to pay for the completion of the hifz, to make someone hafiz of the Quran, provided that the person is poor? So the answer is yes. And again, the procedure has to be done correctly. So either you could give the funds and the fees to the poor student or their parents and say, look, I'm giving you zakat, and hopefully you can use this zakat to pay the fees of your child who's poor to complete the memorization of the Quran. And the other method is that there are organizations that are out there who collect zakat, and they keep the zakat with them, and then when the poor parents or the poor students come, they say, look, if you can't offer the fees, we have zakat in our account, and we can pay the fees with your approval through those zakat funds. So then once they have the people, the recipient's approval, then those funds can be used. Those zakat funds can be used to pay for the fees to complete the memorization of the Quran.
Alhamdulillah. Ji, brother, one more time.
میں سن نہیں سکا کہ شروع میں انہوں نے زکات کے لیے کیا کہا کہ وہ حافظ صاحب کو دے سکتے ہیں حافظ بنانے کے لیے
یس دا آنسر از یس
یس اوکے شکریہ
بہت مہربانی سر بہت مہربانی
اور ایک چیز سوری عید کی نماز کا بتا دیجیے کہ عید کی نماز کا کیا ہے ان کے یہاں کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے
امام صاحب عید کی نماز کا
جی سو یس سو وین اٹ کمز ٹو دا عید پریئر Inshallah, tomorrow I'm going to be doing a recording, and I'm going to be sending it to the radio station. They're going to be playing it as well. But let me give you a brief understanding. Eid al-Fitr this year, for people in Toronto and the greater Toronto area, there's a lockdown in all of Ontario, stay-at-home order. So the masajid that are open, they can only do a few salahs with only a limited amount of people. most of us, we're going to end up doing Eid at home. So you have two choices. One choice is you can do the same Eid prayer in your own homes with the extra takbirat. So that would mean that you make an intention that I'm performing Eid prayer for the sake of Allah with six additional takbirat, as is the Hanafi method. There's also the Shafi method with 14 or 12 or 17 takbirat. All of them are acceptable. But you do the Eid prayer in your own home. You could do it individually. You could do it with your family members. And another easier way is that you just perform two rakaz, normal nafil prayers, in place of Eid prayer, and that would be sufficient. You have to remember that Eid prayer is not fard. According to majority of the ulama and the scholars, it's either sunnat mu'akkada or it's nafil. And according to some scholars, it is wajib or fardul kifaya, meaning that if some people perform it, then the others are not obligated to perform it. So in this manner, what's happening is that because of the lockdown, if we cannot attend an official Eid prayer at a masjid or somewhere else, then just pray at home yourself with your family, or just pray two rakat nafil in place of Eid prayer, and it will suffice for the Eid prayer.
Jazakallah.
Thank you very much.
Thank you, Ji. Thank you. Thank you. This question is a two-part question, too. Can you do a further namaz sitting down?
Okay, so fard namaz, fard prayer, it's mandatory. It's also fard to stand. Qiyam is one of the six conditions of salat. Just like standing, bowing, ruku, sujood, these are fard parts of salat. You have to stand as well. Yes, if someone has a disability, they're unable to stand, they have a medical condition which prevents them from standing, then those people are exempt from standing. They can sit on a chair or they can sit on the ground and perform their salah. But fard prayer, make sure you always stand and pray. If you don't have any medical conditions, then you just have to simply, you have to stand. There's no option for you. But if you have a medical condition, then it's allowed to sit. When it comes to nafil prayer, sunnah prayers, there's flexibility. You have the option, even if you have the ability to stand, you can perform sitting down. But the catch is that you only get half the reward. If you're able to stand in sunnah and nafil prayers and you sit and pray, then you only get half the reward.
The second part question for the same question is, if it's time for first salah and you're not home and you'll miss it, can you pray it in your car sitting down?
Okay, so fard prayer, as I said, is mandatory. You have to stand. So if you miss the fard prayer and you're in your vehicle, the best way or the way that is acceptable is you have to stop your vehicle at a safe place and then get off and perform your salah. If you miss the timing, then it's better to just keep driving, get home, and just perform your qada prayer. But nafil prayer, yes, you can do sitting down in your car. Make sure you're not driving, right? You should be a passenger or someone at the back. And nafil prayer, sunnah prayers, it's fine. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would, when he was on his camel and it was time for fard prayer, he would stop his camel, he would get off, and he would stand and pray. But for nafil prayers and sunnah prayers, there are hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed on his camel and he performed the prayer sitting down on his camel because it was sunnah or nafil prayers. But fard prayers, you have to get off because qiyam is shart. It's a condition. It's a rukn. It's one of the conditions of the prayer.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You put me in trouble. I am old now, okay? Barely, yes. Faraz, when I read Faraz, I stand up and I start reading. And when I go in ruku and then sajda, तो वो मेरी कंसंट्रेशन टूट जाती है, घुटना दर्द कर रहा होता है, पकड़ते पकड़ते जमीन के ऊपर जाती हूँ. Then I sit down and offer my rest of the three rakah while I'm sitting. So yeah. I'm not allowed to do so.
No. So look, if you have, it seems that you have a medical condition or your weakness, right, because of your age.
Yeah.
Allah give you health, Allah give you wealth, Allah give you prosperity.
See, everybody's laughing. When you said due to your age, everybody's laughing at me.
So, inshallah, Allah will keep you alive for a long time. We need your benefit.
Alhamdulillah, you know what, I was thinking the other day, and I think, Imam Sahib, with the last question, I would like you to say little things about it. Logon ko hum darate hain Allah se. And you know what, everybody got to go. Peer Paghambar unki bhi deaths hui. Alhamdulillah. Meri jaiz maut ho. I don't want to kill myself and I don't want to hurt myself. Meri jaiz maut ho. I must be happy that I'm going to meet Allah subhanahu wa ta'ala.
Of course, yes.
And Allah the loves me so much more than what my mama loved me.
Yes,
so don't be scared of your death.
Yes, correct. So since you brought the topic up, there's a definition of maut according to the Sufis. Is al-mautu yusilu al-habib ila al-habib.
Subhanallah.
Death means that the beloved goes to meet the beloved.
Yeah.
So, mashallah, you're right. Absolutely right. A Muslim should not fear death. If it's our time and Allah takes us, inshallah, we're going to Jannah. We're going to the mercy of Allah. Allah is very forgiving, very merciful.
Inshallah.
Now, to answer the question, yes, if you start off standing and you're able to stand for one rakat, then some ulama and scholars, they say, whatever you're able to do, you do. There's a verse in the Quran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Follow Allah and have taqwa of Allah as long as you can, as long as you're able. So from this, the tafsir of this verse, the ulama have written, if someone is able to do a little bit of the action according to the rules, and then the rest they cannot because of their condition, then Allah is ever forgiving. He will accept that. So we should try our best to do whatever we can. Whatever we can't, we do it in our capacity, and Allah knows our situation. He'll forgive us. He'll show mercy for us, inshallah.
MashaAllah. And I request inshallah. Everybody, please do donate generously to Islamic Foundation. How many people you need if they, for example, if I make a budget for
1,347.
It was 1,650 people per month. And 1,650 people, they donate $1 per day. So the everyday collection will be 1,350. Imam Sahib, can you please explain it? And I request everybody, may Allah bless you more. Masajid expenses has to go. There are people full time. They already have cut down some people. Please, Imam Sahib, quickly tell us, break it down, how people can support if they do it on a monthly ground to Nugget Masjid.
Yes, for sure. So, mashallah, as you described earlier, that the Islamic Foundation of Toronto has an operational expense of $600,000 for the whole year. In Ramadan, that's the only time we appeal to the community. And every year, mashallah, we're able to gather the funds for the entire year's operations and services. But since the last year or so, as we know, COVID has been very challenging on the whole community, including the masajid. So we're trying to make it easier for everybody to participate, get all the rewards, and at the same time are able to meet the expenses for the programs and all the services at the Islamic Foundation. So for this, we're appealing to everybody, all the brothers and sisters, that if they can at least donate $1 a day, that would total to $365 for the whole year. And if we have approximately, I don't know the exact amount, but I know it's 1,500, above 1,500. So 1,500 people amongst you. And I'm sure your listeners are more than 1,500. I know many brothers and sisters.
You broke my heart. You broke my heart. It is much more than that.
Exactly, right? So we can get much more, but if all our brothers and sisters can donate at least $1 a day, that's $365 for the whole year. You can either give this as one check or one payment online. And if this is difficult for you, then you can also donate every month. And that would be approximately $10 or $15 every month. And inshallah, it will come directly from your account into the masjid's account. And, you know, we have an automated system where you will get a tax deductible receipt. And at the same time, all the services will be paid for and the expenses will be made. So if we can get 1,500 people amongst you, brothers and sisters, on these blessed days of the month of Ramadan as we conclude, inshallah, you're going to get so much reward. The masjid expenses will be paid for and you're going to bring change in the society, in the community, so that all the operations can continue at the masjid. So once again, this is an earnest appeal. There's many ways to donate. You can directly e-transfer with the email. I'm going to say it slowly, e-transfer@islamicfoundation.ca. Once again, e-transfer@islamicfoundation.ca. Or you can also go on the website, islamicfoundation.ca, and donate in large and small amounts. And inshallah, your donation will be accepted there. If you are in Scarborough, you can also drive through, you can come to the drive-through office we have in the parking lot there, and someone is there stationed during business hours, I think until 7 p.m. every night, every evening. So you can drop by and give your checks or your cash donation, and inshallah, you will get a receipt on the spot.
Thank you very much. Jazakallahu khairan, Janab Sheikh Yusuf Bedat Sahab from Nugget Masjid. Thank you, sir.
Ameen, ameen.
Ameen, ameen. I have a quick message by Adnan Bashir. Adnan, it's
Adnan,
we are ready.
Adnan Bashir?
Adnan, he's his best friend, no? Adnan. So Adnan,
he's my mentor actually.
Adnan Shamsi. Adnan, mujhe ye batayega ke
that's his
Adnan Shamsi. That's not Adnan Bashir, not Adnan Shamsi. Amr Shamsi. Kya ho gaya, baji? Waqai logo inko jo hai roza lag raha hai baji ko. Isme koi shak nahi hai.
Meri oxygen level kam ho gaya. Amir, quickly batayega, Eid ke din Eid drive-through festival, jisko universal promotion karwa raha hai.
Radio Sazo Awaaz.
Drive-through festival, aapko register karana hoga.
Woh zaruri hai.
Ab main aapko ek aur cheez batana chahti hu. It's a very high-tech inhone system kiya hai. Misal ke taur pe main apne phone se book kara rahi hu. Ek phone se main ek gaadi book kara sakti hu. I cannot book second car from the same phone. No. Aur jab main book karaungi, तो फौरन मुझे पता चल जाएगा कि हां जी मेरा बुक हुआ कि नहीं हुआ.
आपको ईमेल आएगी विद द कंफर्मेशन कि आपकी रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड इट इज कंफर्मड. और भाजी लास्ट टाइम जो हुआ था अगेन इस दफा भी माशाल्लाह ताजा की तरफ से बहुत सारी चीजें हैं. माइक कुलाची का मेन्यू जो फीडबैक मिला वी हैव डन के क्वांटिटी वाइज वी हैव रेज्ड क्योंकि
हमने नंबर ऑफ आइटम्स कम किए हैं और
क्वांटिटी बढ़ा दी है.
क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है नंबर ऑफ आइटम्स.
माजिद भाई कहने खाना ज्यादा चाहिए मुझे.
एग्जैक्टली. देखो आमिर, अगर मैं बताती हूं, अगर खाना आप ही के कई दोस्त रेस्टोरेंट्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी देते हैं, मियां बीवी टका के खा लेते हैं, बार बार जाएंगे वहां पे, तो आप क्वांटिटी और अच्छा खाना होगा. उसके बाद ताजा की जानिब से
नान है,
नान होंगे,
गुलाब जामुन
होंगे, गुलाब जामुन होंगे
और जूसेस हैं,
जूसेस हैं.
और आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर ईद पे सबको, और ये एवरीबॉडी शुड नो कि गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं सिर्फ बाजी कहने के ऊपर,
ताजा
डब्बे आ रहे हैं ताजा के, हर गाड़ी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल गिव वन गोलगप्पे का डब्बा.
गोलगप्पे का डब्बा दिया जाएगा. अच्छा, आज मैं साइंस टू गो
टुडे,
साइंस टुडे कितनी दफा बताया, मैं बुढ़ापा है मेरा. साइंस टुडे सुहेल का बहुत शुक्रिया,
ही इज डूइंग अमेजिंग अमेजिंग टीम वर्क.
अलोंग विद दैट आज हमें ज्वाइन किया है ब्रैम्पटन अप्लायंसेस से जनाब सुल्तान साहब ने, तो वी विल हैव अराउंड 500 ड्राइव थ्रू कार्स.
250 कार्स टाइम्स 2 इज 500 ना भाजी.
हाँ, 250 गाड़ियाँ. माइट बी पॉसिबल कि वी कैन हैव सम अदर स्पॉन्सर्स, तो ये नंबर बढ़ भी जाए. अगर आप बिजनेसमैन हैं, यकीनन आपका नाम इस लोगो में आएगा. वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट.
डायरेक्ट पैसा गोज टू द रेस्टोरेंट बिकॉज उन्होंने भी देखा ना कि दे हैव कट डाउन अ कॉस्ट होल मील फॉर ओनली $6 फॉर अस. कॉस्ट ऑफ 10-12 होती ना जी. सो ही इज डूइंग अ स्पेशल थिंग टू इट. तो प्लीज एनीबडी हु वांट्स टू स्पॉन्सर इट, यू कैन कॉल आइदर माई सेल्फ और यू कैन कॉल डायरेक्टली टू.
पर कार दो आपको मील्स दिए जाएंगे. दो मील्स, इसमें मील्स भी हैं ताजा की प्रोडक्ट्स भी. आमिन, बहुत शुक्रिया.
थैंक यू.
अब हमने अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ना है.
इस्लामिक फाउंडेशन,
वी हैव टू गो टू इस्लामिक फाउंडेशन.
जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है मुझे 7 बजे पहुंचना है एक और फाउंडेशन में.
अच्छा,
तो ये है कि अपना
بہت شکریہ. چلیے صاحب اب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں رمضان آج ماشاءاللہ 28 روزہ, کچھ لوگوں کا 27, آج افطاری کا وقت جو ہے وہ 8:32 پہ 8:32 پہ فکر جعفریہ کے مطابق 8:43 پہ افطاری ہوگی. کل انتہائی سحر 4:21 پہ ہوگی. چلیے صاحب پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا. اسی طرح سے بے شمار لوگ, آج بھی مجھے پتہ چلا کہ ہماری بہت پیاری بہن ہے فرحت, ان کے والد بھی کووڈ کا شکار ہوئے تھے, ہی واز ان دا ہاسپٹل. دس از ویری سیڈ مین, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لوز یور لوڈ ونس. اور ایک ایک گھر میں سے دو دو تین تین لوگ کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں. ظاہر ہے دل دکھتا ہے, سمجھ نہیں آتی کس طرف کو منہ کروں, کس طرف کو جاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر رہے, اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے, رزق میں برکت دے. آمین سم آمین. اور میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ شامل نہیں, ان کو ضرور دعاؤں میں شامل رکھیں, اور سب کے ساتھ میرے مظفر علی کو ضرور شامل رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مظفر کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا ٹکڑا. میرے بہت پیارے بھائی عبد الرشید باجوہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی. ماجد بھائی کی بہن کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی تھی, ان کو اللہ, یعنی ایوری بڈی ہو از ناٹ پارٹ آف اس ناؤ, وہ آگے ہم پیچھے, بھلا کر سو بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند
کرے. بھائی ہیں, مقصود بھائی ہیں,
بے شمار لوگ, بے شمار لوگ. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. چلیے صاحب آگے بڑھتے ہیں اور